ये घटनाएं हुई थी, हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो एक दिन की बात थी, दीपावली का दिन, मां यशोदा सोचने लगी कि मेरा बच्चा क्यों दूसरे के घर में जा रहा है चोरी करने। इसका अर्थ है कि हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, वो सोचने लगी। हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है तो आज मैं माखन निकालूं। तो दीपावली के एक दिन पहले वो पद्मगंधा गाय का दूध औंटी गरम की और उसमें ठीक से जामन दिया दही बनाने के लिए। दही खूब अच्छा से बन गया। तो दासियों को जो कृष्ण के लिए माखन निकालती थी उनको दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी मां यशोदा, और सोचते थे कि इतना अच्छा माखन निकालूंगी, इतना अच्छा माखन कि यह माखन खाने के बाद मेरा पुत्र दूसरे के घर की ओर देखेगा भी नहीं। कुछ गौएं थी ब्रज में जिनके लिए सुगंधित घास रिजर्व रखा गया था क्षेत्र चरने के लिए, वे गौएं भी पद्मगंधा गाय कही जाते थे, जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती थी। तो वे गौएं फिर सुगंधित घास चरती थी और 100 गौएं ऐसी थी, 100 गौएं जो दूध देती थी तो उनके दूध को कुछ और गौओं को पिलाया जाता था, सबसे बेस्ट क्वालिटी की गाय। तो उनके दूध को मां यशोदा गरम की और दही जमाई और इसके बाद मथने लगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं कि मां यशोदा किस तरह से दही मथ रही है। यह रानी थी नंद महाराज की गेहिनी, कभी दही नहीं मथी थी लेकिन उस दिन मथने लगी। क्षौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। तो मां यशोदा उस कर्म की सफलता के लिए, अच्छा से कर्म पूरा हो इसके लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहनी, रेशमी लहंगा। लहंगा आप लोग जानते हैं ब्रज की स्त्रियां दो वस्त्र पहनती हैं, एक तो कटी से नीचे लहंगा बहुत बड़ी बड़ी साड़ी होती और एक ओढ़नी इस तरह से ओढ़ती है। तो मां यशोदा लहंगा पहनी रेशमी और रेशमी ओढ़नी। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है तो माखन अच्छा से निकले उसके लिए वस्त्र पहनी। कोई भी काम किस वस्त्र से करना चाहिए जानना चाहिए, सारा काम ये केवल फुल पैंट पहन करके नहीं होता है। यहां भगवान की पूजा करने जाते हैं तो कभी पैंट पहन कर नहीं जाते, देखा है ना आपने, अलग अलग काम है, नाइट ड्रेस अलग होता है अब कोई रात में नाइट ड्रेस पहना हो और वही उठ करके चल दे मंदिर में आरती करे ऐसा करे ऐसे, ये तो ठीक नहीं है। इधर के लोग तो शायद समझते हैं कि कोई भी काम बस फुल पैंट पहनकर करो, कोई भी काम, लेकिन अलग अलग कामों में अलग अलग वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई है शास्त्रों में। सोते समय कैसा वस्त्र पहने, घूमना हो कैसा वस्त्र पहने, समाज में कैसा वस्त्र पहने, देवता की आराधना करते समय कैसा वस्त्र पहने, ये सब सिखाया गया है। हम जो लोग भारतीय कल्चर में जन्म लिए हैं हिंदू में, उनको कम से कम चाहिए कि अपने लिए स्पेशल धोती रखा करें, जन्माष्टमी पर धोती पहने। ये तो रोज पहनना चाहिए लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा कि धोती रख करके किसी किसी पर्व पर, भगवान के जन्मदिन पर या एकादशी को या और किसी अवसर पर धोती पहन करके बैठना चाहिए। देवता लोग धोती पहनते हैं, देवता कभी फुल पैंट नहीं पहनते, भगवान भी कभी ये सब नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन हम भी तो आए हैं, वही जो इंडिया में पहनते हैं वही पहने, गर्मी में एक बढ़ाए हैं स्वेटर बढ़ाए हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों के ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो वस्त्र पहनने के लिए कहा है, वस्त्र रखना चाहिए अपने लिए कुछ ऐसा। स्त्रियों को चाहिए कि अपनी साड़ी रखें और समय पर पहने, और पुरुष तो मां यशोदा रेशमी लहंगा पहनी, तो पहनती ही थी सदा, और मथने लगी। छमम वास पृथुकटी तटे बिभ्रती, पृथुकटी तटे माँ यशोदा के नितंब बड़े बड़े थे तो कमर में बांधी, पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्रु। जब वो दही मथ रही थी तो पुत्र का ध्यान हो रहा था कृष्ण का, और कृष्ण की बाल लीलाओं को ही गा रही थी। जो जो लीलाएं बीत गई थी उन लीलाओं को गा रही थी, अपने आप छंदबद्ध हो जाते थे वे गीत। और कृष्ण को, कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह होने से माँ यशोदा के दोनों स्तनों से दूध चुचुआ रहा था। माँ यशोदा का चेष्ट उसकी कंचुकी भींग गई थी। ये श्री सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं, महाराज परीक्षित की सभा में सुना रहे हैं कि माँ यशोदा के दोनों स्तनों से दूध चू रहा था। दूध क्यों बाहर आ रहा था, इस पर आचार्यों ने लिखा है कि अप्राकृत जगत का दूध भी चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो दूध यह सोच रहा था माँ के स्तनों का कि माँ खूब अच्छा माखन निकालने जा रही है, कृष्ण वैसा स्वादिष्ट माखन खा लेंगे तो हमको नहीं पिएंगे। तो माता यशोदा के स्तन का दूध यह सोच करके चिंतित होकर बारम्बार बाहर आ रहा था कि मैं किस लिए हूं, अगर वो माखन खा करके संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे नहीं पिएंगे। शायद इसीलिए दूध चुचुक से बाहर आ रहा था, स्तन से बाहर आ रहा था, वो शोक में था। तो माता के स्तनों से दूध चू रहा था और स्वीन वक्त्रम और उनके मुख पर पसीने की बूंदे आ गई थी। कभी दही नहीं मथी थी, दही मथने में बड़ा परिश्रम होता है, इधर तो लोग मशीन से मथ देते हैं लेकिन भारत में अभी भी हाथ से मथना पड़ता है। बहुत बड़ा मटका होता है और उसमें मथानी होती है, उसको चलाना पड़ता है घर 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 घर, बहुत परिश्रम पड़ रहा था। लेकिन भगवान में इतना प्रेम था माता यशोदा का कि वो इस परिश्रम को कुछ नहीं गिन रही थी। हाथ की चूड़ियां झनझन झनझन बोल रही थी उसे, और कमर में जो करधनी बांधी थी उसकी आवाज थी। सुखदेव गोस्वामी इस तरह का वर्णन करते हैं, रज्वा कर्ष श्रम चलत भूज कंकड़ कुंडले च, कानों के कुंडल हिल रहे थे, ऐसे ऐसे मथ रही थी, कुंडल हिल रहे थे, चूड़ियां हिल रही थी सोने की, और करधनी में जो किंकड़ियां लगी थी वे बोल रही थी। तो वे कह रहे हैं कि और दही मथने का जो शब्द था, जो मटका का शब्द निकल रहा था घरर घरर, वो लगता था जैसे मृदंग बज रहा है, वो मृदंग जैसा लग रहा था और चूड़ियां आदि करताल जैसी लग रही थी। अलग से वाद्य की कोई जरूरत नहीं थी, तो जीभ लगी हुई थी गुणगान में और कान सुनने में, हाथ सेवा में, मन तो चिंतन में लगा ही था। स्वीनम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था, माँ यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदे आ गई थी, इसलिए उसके मुख की शोभा और बढ़ गई थी। जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है खास करके भगवान के लिए तो वह सुंदर लगने लगता है। तो माँ यशोदा के मुख पर परिश्रम के बिंदु उभर गए थे पसीने, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और उस समय उसके केश पास में जो मालती की मालाएं बांधी गई थी वो पुष्प खुल खुल करके चरण में गिर रहे थे। एक भक्त कहते हैं कि माँ के हाथ की चूड़ियां बज रही थी, बधाई दे रही हैं और प्रसन्न है, धन्य है हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे हुए, और कुंडल झूम रहे हैं कि धन्य है हम उन कानों में हैं जो कान कृष्ण की लीला को सुन रहे हैं। मालती के पुष्प जो सिर पर थे वे गिर करके चरण में आ रहे हैं, फूल सोच रहे हैं कि ऐसी महिमामयी माँ के मस्तक पर रहने योग्य हम नहीं हैं, तो वे टूट टूट करके नीचे चरण में आ रहे थे। ये भाव था फूलों का वास्तव में। अप्राकृत जगत की सभी चीजें चिन्मय है, जड़ नहीं है। तो इस तरह से मां मथ रही थी, कृष्ण के लिए दही मथा जा रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का श्रवण हो रहा है, एकतान दही मथ रही थी। तो यह परिश्रम देख करके अब भगवान की नींद खुल गई। तामस्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहित्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। जब मां इस तरह से परिश्रम कर रही थी अपने पुत्र के लिए, तो भगवान आज असमय में जग गए, ये भोर में दही मत रही थी। कृष्ण थोड़े देर बाद जगते थे, तो कृष्ण का यह स्वभाव है, अथवा किसी भी बच्चे का स्वभाव है, जब वो जगता है सबसे पहले तो मां को पकड़ना चाहता है। कृष्ण जगे, छोटा सा बच्चा जगा, जगते हैं ऐसे मां को पकड़ना चाहता, मां नहीं है बेड पर, मां तो आज दही मथ रही थी। तो कृष्ण देखने लगे कहां गई कहां गई कहां गई, तो ध्यान से सुनने लगे तो मां के कंठ का स्वर सुनाई पड़ रहा था, वो गा रही थी कृष्ण लीला, दही मथ रही थी, तो आवाज पहचान गए कि मेरी मां गा रही है। तो गा रही है तो तब थोड़ा सा रंज होने जैसा वे हो गए कि मेरा कुछ भी केयर नहीं किया, जाकर घर का काम कर रही है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं लेकिन वास्तव में बहुत अनुभवशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वे चाहते हैं कि मां सब काम छोड़कर उनको बस चुमती रहे, खिलाती रहे, पिलाती रहे। ये बच्चे भी अपेक्षा करते हैं, वो तो भगवान ही है, उनके लिए क्या कहना। वो सोचे कि रोज जब ही मैं जगता था तब ही मैं भोजन करता था, मां का स्तन पीता था, आज कहां चली गई, कौन सा जरूरी काम आ गया। तो वो ये करते हुए आंख मलते हुए और चले माता के तरफ। इससे बच्चे कभी कभी नकली रोते हैं, सही में रुलाई नहीं आती है लेकिन उनकी आदत होती है ये करते रहते हैं। तो भगवान इस तरह से कर रहे थे, गए निकट में आए, देखे ध्यान से, कृष्ण तो छोटे शरीर वाले थे, ऐसे मां को देख रहे थे ध्यान से, तो मां का तो कोई ध्यान नहीं था वर्तमान कि कृष्ण यहां आ गया है, कृष्ण की लीला में उसका मन था और सेवा में हाथ लगे थे, वो ये नहीं जानी कि कृष्ण आया है मेरे पास। एकतान मन था, अविष्ट था। एक साधन की प्रेरणा दी जाती है कि इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान स्वयं आते हैं उसके पास। तो आ गए मथनंतिम, कैसी मां के पास आए जो मंथन कर रही थी, बैठी निठल्ली के पास नहीं आए। जो व्यक्ति बैठा रहता है, काम नहीं करता है, भगवान उसको नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो भगवान आए और देखने लगे क्या उपाय करूं कि इसका चित्त बाहर हो, इसका ध्यान भंग हो, तब मुझको दूध पिलाएगी ना। और बच्चा भूखा था, रात भर का दूध पिया नहीं था, रात में बीच बीच में जग करके पिया होगा। लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है, तो सोचने लगे अब क्या उपाय करूं कि मां का ध्यान बाहर हो। यह सोच करके गृहीत्वा दधिमंथानम, जो दधिमंथन दंड था, जिन लोगों ने देखा है वो समझ जाएंगे, मटका में डूबा हुआ था, डंडा होता है, मथानी होती है, उसमें ऐसे निकला होता है, ऊपर पतला भाग होता है और एक खंभा होता है जिसमें वो बंधा होता है दूसरी रस्सी से दो जगह पर। तो जो दधिमंथन दंड था उसी को जाकर पकड़ लिया, ब्रेक लगा दी। यद्यपि कृष्ण उस आयु में इतने बलवान नहीं थे कि वो पकड़ लें और जाम हो जाए, मां खींच रही थी तो कुछ भी नहीं था ब्रेक, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, तो उन्होंने ब्रेक लगाया, ऐसे पकड़ा, जाम किया, तो जब नहीं हिला तब मां का ध्यान आया, क्या हो गया, अकस्मात जाम कैसे हो गया, ये दधिमंथन दंड हिल नहीं रहा है। तो बाहर जब चित आया, आंख खोलती है तो देखती हो कृष्ण आ गया है, तो मां को बड़ी प्रसन्नता हुई, उद्विग्न नहीं हुई कि बच्चा आकर डिस्टर्ब किया, ऐसा भाव नहीं हुआ, बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न किस बात पर हुई कि जो दधिमंथन दंड पकड़ लिया और मां से वो हिला नहीं, तो सोचती है कि मेरे बेटे का बल बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। कोई भी मां इस बात से प्रसन्न होगी कि बच्चा का शारीरिक बल बढ़ रहा है, बताओ इतना पकड़ लिया और मैं चला नहीं पाई, बहुत अच्छा है, हे भगवान मेरा पुत्र इसी तरह से बलवान होता है। वो देखने लगी और फिर बुद्धि पर भी विचार किया बुद्धि भी इसकी बढ़ी हुई है, कहाँ रोकना चाहिए कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए जानता है। तो अपने पुत्र के बुद्धि और बल के उत्कर्ष को देखकर माँ प्रसन्न हो गई, लेकिन आगे देखने लगी अब क्या करता है, तो उठा नहीं रही थी, उसने रोक दिया, ऐसे रुकी रही और देखने लगे कि ये क्या करता है। तो भगवान इसके बाद माँ का हाथ पकड़े, ऐसे दोनों हाथों से माँ का एक हाथ ऐसे पकड़े, हाथ पकड़े और एक पैर मटका के मुख पर दिए, दही जिसमें मथा जा रहा था उस पर, स्टेप जैसा उस पर दिए और इसके बाद माँ के गोद में चढ़ गए। माँ उठाई नहीं, वो देख रहे थे कि क्या करता है, और माँ के गोद में पहुंचे और माँ की कंचुकी हटा करके और दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो माँ ने भी मथना छोड़ दिया, अब दूध पिलाने लगी, सोचे कि भूखा है दूध पीना चाहता है तो इसको दूध पिला लूं। तो माँ का दूध अप्राकृत है, वो स्नेह का दूध वो कम नहीं हो रहा था, और भगवान प्रेम के भूखे थे, उनकी भूख नहीं जा रही थी। अब माँ के दूध में और कृष्ण में कंपटीशन हो गया है, वो दूध कम होता ही नहीं है। माँ यशोदा का जो दूध है वो अनंत काल तक रहेगा, इस जगत में तो माता का दूध थोड़े काल तक रहता है, बच्चा जैसे ही भात रोटी खाने लगता है तो ही दूध खत्म हो जाता है। लेकिन अप्राकृत जगत में माँ यशोदा सदा माँ है और कृष्ण सदा उसके बच्चे हैं, वो दूध खत्म नहीं होगा। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम राज्य का दूध है, खत्म हो नहीं रहा था और भगवान की भूख भी नहीं जा रही थी। वो पिलाने लगी और बीच बीच में कृष्ण के मुख को देखती थी, बच्चा बहुत प्रसन्न था अपनी सफलता पर, किस तरह से मैंने रोक दिया और पीने लगा, तो अपनी सफलता पर अपने विजय पर कृष्ण बहुत प्रसन्न थे कि मैं पहुंच गया उचित जगह पर और मेरा जहां हक है, मेरा जो भोजन है मैं पा रहा हूं। तो बच्चा जब प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता उसके गाल पर आंख पर व्यक्त होती है। तो माँ यशोदा देख रही थी कि बहुत प्रसन्न है और वो पिलाने लगी, उसको कोई उद्वेग नहीं हुआ, आनंद आने लगा, ठीक है पिए पिए। इसी बीच अंगीठी पर जो और पद्मगंधा गाय का दूध उबाला जा रहा था, गर्म किया जा रहा था, तो उसने सोचा, उस दूध ने सोचा कि यदि भगवान माँ के स्तनों का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं आग में जल जल कर तपस्या कर रहा हूं तो मैं तो बेकार रह जाऊंगा, इतना दूध पी लेंगे ज्यादा तो फिर हमको नहीं पिएंगे, तो हम क्यों मर रहे हैं इस तरह से तपस्या करके। तो उसने सोचा कि माँ के सामने आत्महत्या करनी चाहिए। तो माँ ऐसे दूध पिला रही थी, इधर उधर देख रही थी, तब तक दूध में उफान आया। वास्तव में दूध चिन्मय है, जीवित तत्व है, जड़ नहीं वृंदावन का दूध। तो वो सोचा कि मैं आग में गिर करके आत्महत्या कर लूं, या हमको देख करके माँ को दया आएगी, हमको बचाएगी। तो दूध में उफान आया, दूध में जैसे ही उफान आया और माँ यशोदा ने देखा तो उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि बेटा दूध पी रहा है, तृप्त हुआ या नहीं हुआ। उस कृष्ण को तत्काल जमीन पर रह करके और दौड़ी दूध को उतारने के लिए। अब तक तो बेटा में और माँ में बहुत प्रेम का संबंध